ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अमरेली में 4,800 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं के आधारशिला रखी और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जल संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि गुजरात ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान व्यापक बदलावों और बहुमुखी विकास का दौर देखा है। विकास के इसी दौर में सौराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना संभव हुआ, जिससे किसान समृद्ध हुए। श्री मोदी ने सोनी योजना सहित सरकार की विभिन्न पहल का उल्लेख किया, जिनसे सौराष्ट्र की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है वो सौराष्ट्र, कच्छ, जूनागढ़, पोरबंदर और बोटाद जिलों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होंगी। उन्होंने प्रमुख उद्योगपति सावजी भाई ढोलकिया द्वारा किए जा रहे जल संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये भारत में सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स वैश्विक विमानी के विनिर्माण में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि एयरबस और टाटा के बीच की साझेदारी भारतीय वैमानिकी उद्योग की प्रगति में योगदान देगी। दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। इस चरण में 805 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इस चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने आज नामांकन पत्र भरे। भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। पार्टी ने वसई विधानसभा सीट से स्नेहा प्रेमनाथ दुबे को टिकट दिया है, जबकि सुधाकर कोहले नागपुर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 146 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटान प्रणाली के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। ये मोबाइल ऐप चावल मिल मालिकों के शिकायतों के निपटारे में मदद करेगा। ये केंद्र द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों की संतुष्टि के लिए अपनाए गए उपायों में से एक है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने में युवा उद्यमियों के योगदान को रेखांकित किया। आज नई दिल्ली में नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2024 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए नौसेना प्रमुख ने कहा कि इस सेमिनार में वायु सेना, थल सेना और तटरक्षक बलों सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगभग 115 स्टॉल लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत आज हर क्षेत्र में तेज गति से विकास कर रहा है और इसमें युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आईआईटी बीएचयू के 13वें दीक्षांत समारोह में ये बात कही। श्री प्रधान ने संस्थान के अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने 1954 स्नातकों को डिग्रियां प्रदान की। दुबई में आज प्रतिष्ठित ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। भारत की प्रमुख सौंदर्य प्रसाधन कंपनियां प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने इन कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। इसका उद्देश्य वैश्विक सौंदर्य प्रसाधन बाजार में भारत के बढ़ते महत्व को रेखांकित करना है। अल्बानिया के तिराना में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत के पहलवान चिराग ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पहलवानों ने इस चैंपियनशिप में 9 पदक हासिल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।